کچھ معمولات بھی بتائے تھے وظیفوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کچھ معمولات بھی خاص بتاتے. حضرت فرماتے تھے یہ حضرات قرآن و حدیث کو چھان کر اور اس میں غوطے لگا کر کچھ معمولات چن کر امت کو دیتے، ورنہ تو بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے. ایک آدمی اگر صبح سے شام تک پڑھے تو بھی وہ شاید پورا نہ کر، اتنے وظیفے ہیں. دعائے حزب البحر، مناجات مقبول، اور اتنے وظیفے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ سے کسی بڑے عالم نے پوچھا، یہ بھی پڑھ لیا کروں حضرت، یہ بھی پڑھ لیا کروں؟ اجازت دی. پھر کہا اچھا بھی، لیکن پھر فرمایا جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں. تو اس بات کو سمجھیں کہ حکیم کی عطار کی دکان پر بہت سی دوائیں ہوتی، خمیرہ گاؤ زبان، مروارید، لعوق شپستہ، فلاں فلاں. آج جس کو میڈیکل اسٹور پہ تطبیق کر لیں، بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں، پیناڈول سے لے کر اور خطرناک دوائیں تک، تو بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک مریض کے لیے نہیں ہوتی، مختلف مریضوں کے لیے مختلف دوائیں ہوتی. اس لیے ایک مریض ساری دوا کھائے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہر معمول یا ہر وظیفہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے. اسی لیے ایک شیخ سے پوچھا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر سے اسی لیے پوچھا جاتا ہے، میرے لیے کیا دوا بہتر ہے ڈاکٹر، آپ بتائیے. ڈاکٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ڈاکٹر جو ہے بس وہ لکھ دیا، میں اسی پہ عمل کروں گا. ہمارے حضرت والا بھی بہت اس کا خیال رکھتے، ڈاکٹر جو کہہ دے بس پہ، اس کو جو پرہیز بتا دے. دوسرا لاکھ کہتا نہیں اس کا یہ فائدہ ہے، بھائی ہمارے ڈاکٹر نے منع کیا، اسی سے فائدہ ہوتا ہے. تو جو جس مشائخ، جن مشائق سے تعلق ہو، جس شیخ سے تعلق ہو، بس جو انہوں نے بتا دیا اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ملے گی. آدمی چاہے یہ بھی پڑھ لیں. کسی ایک صاحب آتے تھے ہمارے پاس، فلانے شراب میں یہ بتایا، میں نے کہا آپ کو جو بتایا نا آپ پڑھ لیا کریں. ایسے لوگ تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتے، پڑھنے کا خوب اہتمام کرتے، یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، بس پڑھتے چلے جائیں. تو صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، پڑھنے کے ساتھ کچھ کام کرنے کے بھی ہوتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف پڑھنے اور وظیفہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی انجیکشن یا ڈرپ لگائے، لیکن انجیکشن یا ڈرپ اگر طاقت کا لگائے تو کچھ تو اندر بھی طاقت ہونی چاہیے. پہلے آدمی پہلے غذاؤں سے اس کو کنٹرول کرے، پھل وغیرہ کھائے، طاقت کی چیزیں کھائے، پھر نہ ہو تو پھر کوئی نیوروبیان کا انجیکشن، آج کل اس کی بھی جدید شکلیں آ گئیں تو وہ سب لگاتے ہیں. لیکن صرف انجیکشن اور ڈرپ پہ آدمی کیسے چلتا ہے؟ کچھ کھانا پینا بھی تو ضروری ہے. تو عبادات و طاعات اور تقویٰ کے بغیر سب وظیفوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے. تو اس لیے ان معمولات میں حضرت والا نے ایک معمول یہ بھی دیا، حدیث شریف کا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ سات مرتبہ صبح، سات مرتبہ شام پڑھنے کے لیے. معمولات صبح و شام جو حضرت والا کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، جیبی سائز میں، جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. اب آدمی بالفرض فجر پڑھ کے بھی گیا، موقع نہیں ملا، آفس جاتے ہوئے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. اگر خود ڈرائیو نہیں کر رہا ہے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اور تھوڑے دنوں میں یاد ہو جاتا ہے پھر وہ زبانی پڑھ سکتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں جہد البلا سے. جہد البلا اور جہد البلا، ہمارے شیخ فرماتے دونوں طرح ٹھیک ہے، ہر جگہ زبر اور پیش یا زیر بدلنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں کہیں ٹھیک بھی ہوتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہماری اردو میں ہے، لکھنؤ والے موسم کہتے ہیں اور دہلی والے موسم کہتے ہیں، اور اسی طرح فکر جو ہے وہ ہمارے یہاں کراچی میں بھی مؤنث استعمال ہوتی، مجھے فکر ہو رہی ہے، اور دہلی والے اس کو کہتے ہیں مجھے فکر ہو رہا ہے. تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مؤنث مذکر مختلف فی اس کو لکھا جاتا ہے، اور یا اس کے زیر زبر پیش کے بدلنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جیسے شغل ہے شغل ہے، دونوں ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، جہد البلا بھی ٹھیک ہے اور جہد البلا بھی ٹھیک ہے. ठीक है, लेकिन हर जगह ये नहीं चलता कि आप कोई भी लफ्ज उसमें लगा दें। जैसे हमारे यहाँ भी सूरह अखलास चल रही थी तफसीर, तो उसमें आप देखें वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू। अब आप इसको जाके देखें दोबारा घर में, तफसीर कहने नहीं कर रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ वलम यकुन लहू, नून भी है वहां पे, लेकिन जब नून लाम से मिलेगा तो इदगाम हो जाएगा। अब नून की आवाज नहीं, कोई यूं ना पड़े कुन लहू, बल्कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब नून का काम खत्म हो गया, अब नून साइलेंट हो गया, जैसे अंग्रेजी में भी साइलेंट होता है, यहाँ पे इदगाम होने की वजह से नून साइलेंट हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ, बाज़े लोग अजान में बाज़े मुअज़्ज़िनीन जो बाकायदा कारी नहीं होते, वो अशहदु अल्ला इलाहा के बजाय अशहदु अन ला इलाहा पढ़ते हैं, ये गलत है। देखते हैं नून भी है यहाँ पे, इसका भी कुछ काम होना चाहिए। जब लाम से इदगाम हो गया तो अब ये नून गिर गया, अब ये साइलेंट हो गया, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा, बिल्कुल नून खत्म हो गया। इसी तरह वलम कुल लहू, कुन लहू नहीं, असल में है तो कुन लहू ही, लेकिन उसके मिलने की वजह से, उसके मिलने की वजह से वो नून गिर जाता है, साइलेंट हो जाता है। ये सब चीजें, यही चीजें असातिज़ा से और बड़ों से सीखी जाती हैं कि किस लिखा हुआ तो है, उस लफ्ज को पढ़ना कैसे है। अब किसी छोटे बच्चे को आप बिल्कुल का लफ्ज दे हिज्जे करें, कहेगा बाल कुल, सही बात है बाल कुल लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू में इसको कहते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह बहुत सारे अल्फाज में उर्दू में भी साइलेंट हैं, अरबी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं, ये जबानों का अपना तरीका होता है। तो इस लेकिन इसकी किससे सीखा जाता है, अहले जबान से सीखा जाता है। इसीलिए अहले इल्म बताएंगे कि इसको ऐसे पढ़ना भी ठीक है ऐसे, और वरना ऐसे पढ़ना, दूसरी तरह पढ़ना ठीक नहीं होता। जैसे एक लफ्ज है मिल्क, मुल्क और मलिक, इसके कितने लिखने में एक ही तरह है, अगर उसमें जेर जबर पेश ना हो, जब दूध की दुकान पे लिखा रहता है तो मिल्क ही पढ़ा जाता है, तो बताए मुल्क सेंटर नहीं होता, मिल्क सेंटर होता है, मिल्क की दुकान होती है, मुल्क की दुकान नहीं होती। बहुत से लोग मुल्क को भी मुल्क कहते हैं, इससे जो है अहले जबान की सर में दर्द हो जाता है। एक बड़े शायर के यहाँ जब उसने किसी कोई शायर ठहरा तो उस मेजबान ने गलत उर्दू बोल दी कि आप पूना से कब आए, पूना से, जैसे कोई कहे क्वेटा से तो वो पूना से कब आए, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में थोड़ी सी जहर होगी। मैंने कहा क्या हो गया, क्या मैंने क्या कह दिया, कहने आपने जो पूना से कहा है मुझे इतनी तकलीफ हुई है, अगर थोड़ी जहर होती मैं खा के मर जाता। आप पुणे से भी कह सकते थे, जैसे कोई कहे मटका से पानी दो, बुरा लगता है, गैर फसी है, खासकर शायर और अदीबों को बुरा लगता है मटका से मटके से पानी दो। तो इसी तरह डॉक्टर अब्दुल्हई साहब रहमतुल्लाह ताला के बारे में हमारे उनके खलीफा थे मौलाना कल्याणी साहब, वो फरमाते थे, हजरत से किसी ने पूछा कैसे हजरत ठीक ठाक हैं, फरमाया अरे भाई ठीक ठाक नहीं है तो ठोक ठाक दो, इतना तुम लोग सकील लफ्ज इस्तेमाल करते हो, मिजाज बखैर हैं, यूं भी तो कह सकते हो मिजाज कैसे हैं, मिजाज बखैर हैं। तो ये खासकर अहले जबान और जो नाजुक मिजाज होते हैं उनकी, उनसे ये सब चीजें सीखी जाती हैं कि उर्दू को किस तरह इस्तेमाल करना है। खासकर लखनऊ में जो उर्दू बोली जाती है उसमें इसका बहुत ख्याल रखा जाता है, मिजाज बखैर हैं और तशरीफ लाइए, ये नहीं आ जाइए बल्कि कहते हैं तशरीफ लाइए। हमारे कराची वाले इस लफ्ज को भी नहीं समझते, कहते मैं आप तशरीफ लाऊंगा आपके, क्या आपकी रिहाइशगाह कहाँ, मैं तशरीफ लाऊंगा और आप भी हाजिर होइएगा कभी ना कभी। दूसरे के लिए हाजिर होना कह रहे हैं और अपने के लिए कह रहे हैं तशरीफ लाना, ये जबान को सीखने की जरूरत है। इसीलिए लखनऊ एक आदमी लखनऊ गया था जबान सीखने, सुना है कि बहुत अच्छी जबान होती है वहां की, तो उसने एक रिक्शे वाले से पूछा कि देखो भाई मुझे जरा शहर में जाना है, लखनऊ के स्टेशन से उतरा और कहा मुझे शहर के दरमियान में जाना है, तो कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपको शहर के वक्त में ले जाऊंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आप दूर दराज वासे वाले रास्ते से जाना पसंद फरमाएंगे या नशेब व फराज वाले रास्ते से जाना पसंद फरमाएंगे। जैसे यहाँ से कोई कनीज फातिमा से निकले नशेब व फराज है ना, कितना रोड खराब है, एक है सही सड़क भी अब सही कहाँ है हमारे यहाँ, लेकिन बहरहाल उससे बेहतर है। तो उसने जब ये पूछा कि आप दूर दराज वाले रास्ते से जाना पसंद फरमाएंगे या नशेब व फराज जो हमारी उर्दू शायरी में इस्तेमाल होता है से जाना पसंद फरमाएंगे, तो उसने कहा अब हमें जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं से वापस जाएंगे। जब यहाँ के रिक्शे वालों का ये हाल है तो फिर शहर वाले क्या करते होंगे, शहर वाले क्या करते होंगे। हज़रत फरमाते थे वहाँ की तो टकड़ियाँ भी जो बिकती हैं वो भी ऐसे कि लैला की मजनू की पसलियाँ हैं, लैला की उंगलियाँ हैं, मजनू की पसलियाँ हैं, क्या खूब ककड़ियाँ हैं, क्या खूब ककड़ी जहाँ की उर्दू। तो इसलिए आज हमारे कराची वालों ने उर्दू का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, क्योंकि सही था अब अपने घर की जबान है ना, हालांकि घर की जबान की तो और ज्यादा कदर करनी चाहिए। तो लिहाजा जबान को गलत बोलने से उसकी फसाहत खराब होती है। जबान को कहें पहुंच जाने को पहुंच जाना, पहुंच जाना, पहुंच जाना क्या लफ्ज होता है, लफ्ज को तो कम अज कम। अब जैसे अब कोई कहे हम गए शाम को शादी में, एक ने कहा हम गए शाम को शादी में और वहां पर पी लिया शरबत और घर आए तो ले पेशाब और दे पेशाब, एक जुमले में कितने नुक्ते उड़ा दिए, 5 शीन के नुक्ते, 15 नुक्ते उड़ा दिए, बुरा मालूम होता है। तो उर्दू में बुरा मालूम होता है, अंग्रेजी गलत बोले तो बुरा मालूम होता है, लेकिन कुरान और हदीस में हम अक्सर गलत पढ़ते रहते हैं। बता रहा हूँ सूरह इखलास जैसी मशहूर सूरत जो है वो भी अक्सर लोग सही नहीं पढ़ते, भाई कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब वो जो जितनी फजीलतें बयान हुई हैं ये सही पढ़ने पर है, ये सही पढ़ने पर है। आदमी कहे इंसान ऐसा होता है, इंसान वैसा होता है, यही इंसान है जब खराब होता है तो कैसा हो जाता है, फिर कैसा हो जाता। तो ये सब फजाइल उसके लिए हैं जो इसको सही पढ़ने का एहतमाम करे। तो ये अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन जहदिल बला, और जहदिल बला क्या चीज है, ये हमारे शेख फरमाते थे सख्त मुशक्कत, मेहनत मुशक्कत, इसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते कि कसरतुल माल कसरतुल आयाल व किल्लतुल माल, कसरतुल आयाल, आयाल ज्यादा हो, 4, 5, 6, 8 बच्चे हो और माल कम है, इससे अल्लाह ताला ने के महबूब ने पनाह मांगी, या अल्लाह माल दी औलाद दीजिए तो माल भी दीजिए। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला को दुआ देते हुए फरमाया था अल्लाहुम्मा बारिक फी माली ही, या अल्लाह इसकी माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाहुम्मा बारिक फी माली ही व वलदी ही, और इसकी औलाद में भी बरकत अता फरमाई। क्योंकि अगर औलाद ज्यादा हुई पहले कह देते तो आदमी डर जाता, औलाद ज्यादा होगी तो खाएगी कहां से, पहले माल की दुआ दी, पहले माल की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक फी माली ही व वलदी ही व अतिल उम्रहू, और इसकी उम्र को भी खूब तवील कर दीजिए। हजरत अनस फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की दुआ मेरे हक में ऐसी कबूल हुई, क्योंकि वो खिदमत करते थे, खाली जाके दुआ करने से नहीं, करवाने से नहीं होता, जो खिदमत करता है दुआ दिल से निकलती है, ऐसी दुआ कबूल हुई। जिस दरख्त को और कोई लगाता था साल में एक मरतबा फल आता था, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से मैं जो दरख्त लगाता था साल में 2 दफा फल आता था। बाद लोग मुझे कहते थे दरख्त उखाड़ के दोबारा लगा दो, दोबारा लगा दे तो दोबारा दो दफा फल आने वाला दरख्त बन जाता। वातुल उम्रहू, औलाद में इतनी बरकत हुई, वलदी ही औलाद में इतनी बरकत हुई, कहते हैं कि मैंने 98 औलाद, चाहे सुलबी इसको कहते हैं, नवासे पोते वगैरह मिला के मैंने अपने हाथों से दफन किए। तो जिंदा कितने होंगे, मरते कम है जिंदा ज्यादा रहते हैं, 98 औलाद को जिसने दफन किया हो उसके जिंदा कितने होंगे। और फिर खुद कहते हैं इतनी आपकी दुआ मुझे लगी कि मैं अब जीते जीते थक गया हूँ, 100 साल से ज्यादा उम्र अल्लाह ताला ने, ये नबी अलैहिस्सलाम की दुआ थी। लिहाजा आपने दुआ की तरतीब ये रखी, माल की बरकत की भी दुआ दी, यानी कि माल ना मिले ऐसा नहीं, बल्कि माल की बरकत की दुआ देनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ आमाल भी होने चाहिए। सिर्फ आज हम चाहते हैं बस या अल्लाह रिस्क दे दे, तो रज़ाक से जहाँ रिस्क मांगे वहाँ रज़ाक का ताल्लुक भी मांगे। कोई तुझसे कुछ, कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। अल्लाह ताला ये हौसला और ज़ौक हमें नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।